आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्लास 10th के साइंस का 14th चैप्टर है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। थर्मल पावर प्लांट्स में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम वहां पर क्या करते हैं कि जो कोयला है या फिर फॉसिल फ्यूल है, इसको हम लोग यूज करते हैं टू हीट अप दी वाटर। पानी को गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। पानी जब गर्म हो जाता है तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भाप हम लोग टर्बाइन के ऊपर डालते हैं, और टर्बाइन के ऊपर भाप डालने से हमारी टर्बाइन रोटेट करती है, उस पर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होता है। मैकेनिकल एनर्जी जब क्रिएट होता है तो वो डायनामो के यूज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स में हम लोग पानी का यूज करते हैं। पानी का यूज करके हम जो पानी का फ्लो है उसमें, अगर पानी फ्लो कर रहा है तो उसके पास ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी मौजूद होता है। उस काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं और डैम बना देते हैं। जो भी पानी का रास्ता है उसके रास्ते पर हम डैम बना देते हैं। कॉन्क्रीट यानी कि सीमेंट वगैरह, पत्थर वगैरह, ब्रिक्स यूज करके हम एक रास्ता बना देते हैं जो पानी के फ्लो का रास्ता रोकता है। अब जब पानी के फ्लो का रास्ता रुकेगा तो जो डैम बनाया गया है वहां पर पानी इकट्ठा होता जाएगा। पानी इकट्ठा होता जाएगा तो पानी का लेवल राइज करेगा। लेवल राइज करेगा तो पानी के लेवल के राइज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है पानी की वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी पानी की विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब जो डैम है उसमें हम डैम के नीचे, हाइट पर नहीं नीचे, तो वहां पर हम लोग एक होल भी छोड़ देते हैं, एक रास्ता भी बना देते हैं जिसके थ्रू पानी जो हाइट पर पहुंच चुका है वो उस नीचे वाले रास्ते से पास करता है। तो वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ फ्लो करता है, जिसकी वजह से जब वो फोर्सफुली टर्बाइन के ऊपर पड़ता है तो टर्बाइन रोटेट कर जाता है। टर्बाइन के रोटेट होने से डायनामो से कनेक्ट करके हम मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम पानी के यूज से बना रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, टर्बाइन को रोटेट कर रहे हैं, तो टर्बाइन रोटेट होता है तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होता है। तो टर्बाइन की मैकेनिकल एनर्जी को कराने के लिए हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं। अब हमने डैम्स के बारे में ये पढ़ा था कि डैम्स को बनाने के डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पर डैम जो बना रहे हैं उससे एनर्जी बन रही है, बिजली क्रिएट हो रही है। यहाँ पर जो ये बिजली क्रिएट हो रही है इससे एनवायरमेंट को पॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और एक फायदा ये है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो सोर्स ऑफ हमारा एनर्जी है वो क्या है, पानी का फ्लो है बेसिकली। और पानी का फ्लो जो है वो तो नष्ट होगा नहीं, तो इसीलिए ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं कि ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, तो हाइड्रो पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट की जा रही है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब नुकसान क्या क्या है? नुकसान ये है कि जिस जगह पर डैम बनते हैं वो लार्ज एरिया में बनते हैं। डैम बनाने के लिए जो जगह है वो हमें चाहिए, तो वहां पर जितना वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, वो सारा नष्ट हो जाता है। तो वाइल्ड लाइफ जितनी भी उस जगह पर रह रही थी जहाँ डैम बनाया, वो सारी नष्ट हो जाती है। वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं उनको भी हटाना पड़ता है, उन्हें किसी और जगह पर भेजना पड़ता है। तो वहां पे रह रहे जो इनहेबिटेंट्स है, जो लोग हैं, उनको भी रिलोकेट करने में दिक्कत आती है। तो कुछ दिक्कतें भी आती है, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट बायोमास। बायोमास में मैंने आपको बताया था कुछ भी जैविक चीज यूज करके हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो जो जैविक चीज यूज की गई है वो बायोमास कहलाएगी। जैसे लकड़ी आप यूज करते हैं, लकड़ी जला करके कुछ लोग गर्म करते हैं अपने घरों को और कुछ लोग खाना भी बनाते हैं। तो लकड़ी भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हम उसको एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल हम यूज करते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं, हीट एनर्जी। लकड़ी से बेहतर को चारकोल है। चारकोल जो है वो हमने कैसे बनाया है, लकड़ी को लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में बर्न किया है, तो उससे क्या होता है कि लकड़ी का वाटर जो है, जो भी मॉइस्चर उसके अंदर होता है वो रिमूव हो जाता है, और उसके अंदर जो भी वॉलेटाइल मटेरियल होता है वो भी निकल जाता है। वॉलेटाइल मटेरियल कौन से होते हैं, जो भाप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जितने भी वॉलेटाइल मटेरियल्स है वो भी निकल जाते हैं, मॉइस्चर भी निकल जाता है। तो जो रिमेनिंग चीज रह जाती है उसे चारकोल कहते हैं। चारकोल को जब जलाते हैं तो हीट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्मोक भी कम पैदा करता है, धुआं कम पैदा करता है और अच्छे से जलता है। सिमिलरली हमने बात की थी अबाउट बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस में हम जो बनाते हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स का छिलका हो गया, फ्रूट्स का छिलका हो गया, या फिर फूल पत्तियों की जितनी भी सड़ती हुई चीजें हैं वो सारी हम ले लेते हैं, उसको गोबर के साथ मिक्स करते हैं, एक ढीला मिक्सचर तैयार करते हैं जिसके अंदर, जिसको हम लोग ले जाके बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं। इनलेट होता है, एक अंदर भेजने का रास्ता होता है, उसमें हम डाल देते हैं। बायोगैस प्लांट जो है ये एक चेम्बर है, एक ऐसा चेम्बर है जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है जो डाइजेस्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को और काउडंग को, वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं और अपना काम भी वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं। तो हम एक ऐसा बायोगैस प्लांट बनाते हैं जो कॉन्क्रीट से बनाते हैं, ईंट पत्थरों से बनाते हैं, सीमेंट वगैरह यूज करके बनाते हैं, एक चेम्बर बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मिक्स कर देते हैं काउडंग के साथ और उसको डाल देते हैं चेम्बर के अंदर, और वहां पर बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, और ज्यादा अमाउंट जो होता है वो मीथेन गैस का होता है। ये मीथेन गैस जो है ये बहुत ही यूजफुल होती है, इसे आप बर्न करेंगे तो इस पे खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि एक इनलेट जुड़ा होता है जो गैस को घरों में सप्लाई करता है। इस पे खाना बनाएंगे इसको बर्न करके, तो इससे धुआं नहीं क्रिएट होगा, इसकी एफिशिएंसी, हीट एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है और पोल्यूशन भी नहीं होता है ज्यादा, तो इसीलिए, और फ्री भी है, चीप है, बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी शो किया गया है, पेज नंबर 247 पर जो बायोगैस प्लांट होता है उसका डायग्राम आपको शो किया गया है। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये भी रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म नहीं होगी, जब तक हवा बहती रहेगी तब तक एनवायरमेंट में हम विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से या फिर एनर्जी डिफरेंस की वजह से कभी कभी विंड जो है वो फ्लो करती है। अगर तेजी से फ्लो करेगी तो उस तेज बहती हुई हवा को हम यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में क्या होता है कि बहुत बड़ी सी एक फैन लगाई जाती है जो कि तेज हवा की भाव की वजह से, अगर तेज हवा बहेगी तभी ये विंड फैन जो है, विंड मिल इसको कहते हैं, तो ये एक बड़ी सी फैन होती है, अगर तेज हवा बहेगी तो ये रोटेट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी इसमें क्रिएट होगी और इस मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोगों को विंड मिल का डायग्राम दिखाया गया, पेज नंबर 247 फिगर 14.5। इसमें आप देखो बहुत बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगाई गई हैं जो रोटेट करती हैं। पुराने जमाने में ये पंखुड़ियां यूज की जाती थी पानी लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए मतलब वेल जो कुआं है उसमें से पानी निकालने के लिए, पानी बाहर निकालने के लिए ये पंखुड़ियां जैसा मटेरियल, विंड मिल जैसा एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता था बहुत पुराने जमाने में। आज के जमाने में हम विंड एनर्जी का यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर विंड एनर्जी को हम यूज तो कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो विंड मिल एक छोटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक विंड मिल अगर हम यूज कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो बहुत कम अमाउंट की होती है, इतनी नहीं होती है कि कुछ उससे हमें कमर्शियल बेनिफिट हो, तो इसलिए हमें बहुत सारी विंड मिल्स लगानी पड़ती हैं। और क्योंकि विंड मिल्स, एक विंड मिल ही बहुत ज्यादा एरिया घेरती है और हमें बहुत सारे अगर विंड मिल्स लगाने हैं तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा लैंड स्पेस चाहिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कमर्शियल यूज के लिए, बहुत लार्ज स्केल पर अगर यूज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए यूजिंग विंड मिल्स, तो उसके लिए हमें बहुत बड़े एरिया में विंड मिल्स लगाने पड़ते हैं, और ऐसी जगह को जहां पर हमने बहुत बड़े एरिया में विंड मिल्स लगाए हुए हैं उसे हम विंड एनर्जी फार्म भी कहते हैं, उस एरिया को विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे क्या होता है, विंड मिल की फैंस रोटेट करती है, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी जो है डायनामो की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मैकेनिज्म वही है जो आप लोगों ने टर्बाइन में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि ज्यादा अगर एनर्जी क्रिएट करानी है तो उसके लिए हमें ज्यादा एरिया चाहिए होता है विंड मिल्स को लगाने के लिए। अब अगर बात करें विंड मिल्स से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों की, तो डेनमार्क नाम की एक कंट्री है जिस कंट्री को कंट्री ऑफ विंड्स कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि डेनमार्क जो कंट्री है वो मोर देन 25% उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, जो आवश्यकता है, उसको वो विंड एनर्जी की सहायता से पूरा करते हैं। तो उनके उनके देश में बहुत सारी विंडमिल फार्म्स है जिनका वो यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी का यूज करते हैं, तो इसीलिए इनको कंट्री ऑफ विंड्स भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो जर्मनी जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो लीडर है बेसिकली, इनके देश में पूरी दुनिया के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी बनाई जाती है। हमारे देश की अगर बात की जाए तो हमारा देश 5th नंबर पे आता है अगर विंड एनर्जी की क्रिएशन की बात की जाए तो। हमारे देश में विंड एनर्जी की क्रिएशन जो है वो ठीक ठाक होती है, लेकिन कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इंडिया फुल्ली फोकस करे और बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजीज का यूज करके जितनी भी विंड एनर्जी है उनका सबका यूज करे तो हम लोग कम से कम 45,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं, जो बहुत ह्यूज अमाउंट है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। हम लोगों को फिर बिजली की लिए कहीं पर और डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज की रेट में हम लोग इतना ज्यादा अमाउंट का विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल पावर क्रिएट नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा विंड एनर्जी फार्म है वो है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, और ये जो विंड एनर्जी फार्म है ये सिर्फ 380 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। आप देखो कि कहां 380 मेगावाट और कहां 45,000 मेगावाट। हमारे देश के लिए कहा जाता है कि हमारा देश अगर फुल्ली पूरी की पूरी विंड एनर्जी को यूज करे, जो हमारे देश में आती है जितनी भी विंड एनर्जी अगर उसको सारे को यूज करे तो हम 45,000 मेगावाट बना सकते हैं, और अभी जो हमारे पास लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म है वो सिर्फ 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज गैप है जिसे अगर पूरा करना चाहें तो देश कोशिश कर सकते हैं। हर कंट्रीज को ऐसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, हमारे एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं करती हैं, रिन्यूएबल हैं, ऐसी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पर विचार करना चाहिए क्योंकि इनसे बहुत फायदे हैं। इनको वापस से एक बार फार्म लगा दिया तो वो एस्टेब्लिश कर दिया गया, उसे वापस उसमें दोबारा खर्च करके फिर से वो फार्म नहीं लगाना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे हर साल अगर हम पेट्रोलियम ले रहे हैं दूसरे कंट्री से, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें हर साल उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन विंड एनर्जी फार्म में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विंड एनर्जी फार्म अगर हमने एक बार लगा दी है तो वो हमारे देश में ही रहेगी, एक बार का खर्च है। तो ये सारे फायदे हैं, तो लेकिन कुछ नुकसान भी है, हर एक चीज के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या नुकसान है वो देखते हैं। अगर विंड एनर्जी का यूज करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड की जो स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो वो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड विंड की होनी ही चाहिए। अगर उससे कम होती है तो विंड एनर्जी से कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनेगी। दूसरा ये कि क्योंकि हमने यहाँ पर विंड एनर्जी के लिए विंड मिल्स लगाई हैं, लोहे की होती हैं, इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है मेटल का होता है, तो बारिश हो रही है, कभी हीट हो रही है, धूप बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, या फिर कभी स्टॉर्म आ रहा है, बिजली कड़क रही है, तो हमें मेंटेनेंस में भी खर्च करना पड़ता है। विंड एनर्जी फार्म्स जो है इनके मेंटेनेंस में भी खर्चा करना पड़ता है। तीसरा ये क्योंकि हर रोज तो हर साल के हर समय तो हवा चलेगी नहीं इतनी तेज, तो जिस समय चलती है हवा तेज वो तो बहुत अच्छा समय होता है, लेकिन साल के कुछ समय में हवा तेज नहीं भी चलती है, उस वक्त के लिए हमें बिजली सप्लाई करने का दूसरा मेथड भी हमें सोच के रखना पड़ता है कि आसपास के घरों में बिजली सप्लाई का दूसरा सोर्स होना चाहिए। विंड एनर्जी पे कुछ साल के कुछ समय के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तीसरा नुकसान यह है कि विंड एनर्जी फार्म्स जो हैं इनको बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा लैंड स्पेस चाहिए होता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि अगर हम 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 2 हेक्टेयर लैंड चाहिए होता है। तो सोचो जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी में बना होगा 380 मेगावाट, तो हम लोगों ने 380 मेगावाट बनाने के लिए 380 × 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड यूज किया होगा विंड एनर्जी फार्म बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लैंड स्पेस बहुत ज्यादा यूज होता है अगर हमें विंड एनर्जी यूज करनी है। तो हर एक चीज के कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, दोनों को ध्यान में रख के क्या ज्यादा है, कौन से का ज्यादा नुकसान है तो उस चीज को हम नहीं करेंगे, फायदे ज्यादा हैं तो उस चीज को हम करते हैं। तो सारी चीजें ध्यान में रख करके ही एनर्जी यूज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देख लेते हैं पेज नंबर 248 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के क्या क्या नुकसान है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फॉसिल फ्यूल्स के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान तो ये क्योंकि ये बहुत साल लगते हैं इसको बनने में, ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको ये एक बार जो बन चुका है उसके बाद बनने में, वापस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा नुकसान ये कि फॉसिल फ्यूल्स जो है इन्हें बर्न करने में हम लोग जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं एनवायरमेंट में वो बहुत नुकसान करता है हमारे पॉल्यूशन को, जिसको हम वापस से ठीक करने में बहुत हमें मुश्किल होगी। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर ली जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इतना सारा रिलीज हो रहा है फॉसिल फ्यूल के बर्न होने की वजह से, ये सारा का सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी भी लो लाइंग एरियाज हैं, जो पानी के पास की जो एरियाज हैं, घर वगैरह हैं, लोग जो रहते हैं वो डूब जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये सारे नुकसान हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस के साथ में कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करती हैं, जैसे कि एसिड रेन में जो गैसेस आती हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये गैसेस जो हैं ये एनवायरनमेंट में एसिड रेन कॉज करती हैं। एसिड रेन से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, मार्बल डिसफिगर हो जाता है, जितनी भी मेटल की चीजें हैं वो सारी खराब हो जाती हैं, पेंट वगैरह खराब हो जाते हैं, तो ये सारा नुकसान होता है। साथ में अगर कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है फॉसिल फ्यूल तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का गैस रिलीज करता है जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी? हम लोगों के पास ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंड करें, किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम सोचे ही ना? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल्स, तो इसलिए हम ऐसा सोच के नहीं बैठ सकते कि सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरा ये कि फॉसिल फ्यूल जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसलिए हमें अल्टीमेटली कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में भी सोचना पड़ रहा है जो एक तो सस्ते हो, साथ में एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और साथ में ये रिन्यूएबल भी हो, हम लोग इनको बार बार यूज कर पाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी बीन मॉडिफाइड फॉर आवर कन्वीनियंस? पुराने जमाने में जो तरीका था यूज करने का पानी को और विंड एनर्जी को और वाटर एनर्जी को, वो कैसे अलग है आज के जमाने के तरीकों से? पुराने जमाने में भी विंड एनर्जी को यूज किया जाता था, लेकिन उस वक्त सिर्फ मैकेनिकल वर्क के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि आपने पढ़ा कुओं से पानी को निकालने के लिए यूज करते थे, तो ये बहुत छोटे यूजेज हैं। लेकिन आज के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और प्रोसेस को और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ताकि हम उसको और भी अलग अलग तरीकों से यूज कर पाए, तो आज के जमाने में अलग कर दिया हमने। पुराने जमाने में डैम्स नहीं बनते थे, आज के जमाने में डैम्स बनते हैं। पुराने जमाने में लोग जो वाटरफॉल से एनर्जी गिर रही है उसी का यूज कर लेते थे, लेकिन आज के जमाने में हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करते हैं। पहले के जमाने में जो पहाड़ों से पानी गिर रहा है वो हाइट से गिर रहा है तो उसकी भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम आज के जमाने में डैम बना करके पोटेंशियल एनर्जी देते हैं पानी को, और उसके बाद टर्बाइन पर वो पोटेंशियल एनर्जी पानी की गिरती है, मैकेनिकल एनर्जी में टर्बाइन की एनर्जी कन्वर्ट होती है और उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो आज के जमाने में बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर दिया है अपने यूज के हिसाब से, जो हमारी यूज है उसको पूरा करने के लिए हमने प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स कर दिया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज भी हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 248 पर ही है, ऑल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऑल्टरनेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जो यूज करते आ रहे हैं, अब तक जो यूज करते आ रहे हैं उसके अलावा नए सोर्स ऑफ एनर्जी हम ढूंढ रहे हैं, वो उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसलिए इनको नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं। कन्वेंशनल मतलब पुराने जमाने से जो चली आ रही है ऐसी प्रथाएं टाइप। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी थी, विंड एनर्जी थी, वाटर एनर्जी थी और फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी थी, तो ये सारी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है। लेकिन आज के जमाने में हम अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी और ढूंढ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमें और भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढने पड़ रहे हैं, और वो पहले के जमाने के सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पहले के जमाने के सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जमाने से अलग है आज के जमाने के जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। आप ये बात चेक भी कर सकते हो, एक्टिविटी 14.4 पेज नंबर 248 पर है, बहुत इजी एक्टिविटी है। आपको अपने जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, दादी दादा हैं, उनसे पूछना है कि उनके जमाने में जब वो स्कूल जाते थे तो कैसे जाते थे, जब वो रोज पानी वगैरह का उनका जो यूज था, पानी के रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते थे, और साथ में ये भी पूछ सकते हैं आप कि उनके एंटरटेनमेंट के क्या तरीके थे, कैसे वो खुद को एंटरटेन करने थे। आज के ज़माने में आप लोग देखोगे कि पुराने ज़माने में जो तरीके थे स्कूल जाने के, लोग ज़्यादातर पैदल जाते थे या फिर बोट यूज़ करते थे या फिर बाइसाइकिल यूज़ करते थे। आज के ज़माने में पैदल तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं या फिर बस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पब्लिक या फिर प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं मोस्टली। अब बात की जाए कि पानी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो कैसा पूरा करते थे, वो लोग खुद जाकर के नदी से पानी लेकर के आते थे। लेकिन आज के ज़माने में पानी वगैरह का रिक्वायरमेंट हम जो पूरा करते हैं, हमारे पास मोटर्स हैं तो पानी आसानी से हम लिफ्ट कर लेते हैं, हम लोग बिजली ऑन करते हैं, मोटर पानी को पंप करके ऊपर दे देता है। तो इस तरीके से अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो पुराने ज़माने में लोग एंटरटेनमेंट के लिए खुद इकट्ठा होकर खुशियाँ मनाते थे, डांस वगैरह करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी, हम या तो अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं या अपने मोबाइल्स या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज भी अलग अलग हो गए हैं। जैसे जैसे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बड़े हैं, अलग हुए हैं, डिफरेंट हुए हैं, पानी निकालने के सोर्सेज अलग हुए हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग हुई हैं, तो जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी की डिमांड्स बेसिकली बढ़ती चली गई हैं। अब इन एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें पहले के सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अलावा भी दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़े, और जैसे जैसे हम नए सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढते गए तो उस सोर्स ऑफ एनर्जी से जो हमें चाहिए, जिस फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए, उसमें कन्वर्ट करने के लिए भी हमने डिवाइसेस बनाए, टेक्नोलॉजीज बनाए। अब यहाँ पर आप लोगों को एक थिंक इट ओवर दिया गया है पेज नंबर 248 पर, कि अगर आप ऐसा सोचें कि आपके दादा दादी जिस तरीके से रहा करते थे, अगर आप उस तरीके से रहें तो बेसिकली एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुँचता है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स घट जाती हैं। लेकिन क्या आज के ज़माने में वो पॉसिबल है? आज की टेक्नोलॉजीज को देखते हुए, आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए, क्या पुराने ज़माने में जिस तरीके से हम रहा करते थे वैसे रहना आज के ज़माने में पॉसिबल है? नियरली इम्पॉसिबल है। तो आप लोग इस बारे में सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के, जिनमें से पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सोलर एनर्जी। सूरज से जो एनर्जी हम लोगों को मिलती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता है सूरज एक बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स है। सूरज से जो एनर्जी मिलती है, बेसिकली हम कहें तो उसी से सारी लाइफ सस्टेन होती है हमारी धरती के ऊपर। हम लोग अल्टीमेटली सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट पे निर्भर करते हैं हमारे खाने के लिए। मान लो कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो कहेंगे कि वो तो नॉन वेजिटेरियन है, वो एनिमल मीट खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एनिमल तो लीव्स खाता है, प्लांट मटेरियल खाता है। तो यहाँ पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली प्लांट पर डिपेंडेंट है, और प्लांट्स जो हैं वो सन पे डिपेंडेंट है। सन से जो एनर्जी आ रही है उसको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं एज अवर सोर्स ऑफ फूड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी धरती पर लाइफ सस्टेन करने के लिए। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंस है सन की, वो ये है कि सन से जो एनर्जी आती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर हम उसे यूज़ करें एज आवर सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो वो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। सन की अगर बात की जाए तो ऐसा कहते हैं कि 5 बिलियन ईयर्स से सन इतनी एनर्जी क्रिएट करता रहता है, अभी तक भी वो है और अगले 5 बिलियन ईयर्स तक भी वो रहेगा सन, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो अभी भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है 5 मोर बिलियन ऑफ ईयर्स के लिए भी। सूरज की बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे धरती पर पहुंचती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। जब सन से आ रही एनर्जी धरती पर पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर में पहुंचते पहुंचते आधी एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में ही अब्सॉर्ब हो जाती है, बाकी की आधी ही सिर्फ धरती पर पहुंचती है। हमारा जो देश है भारत, कहते हैं कि हमारा देश बहुत लकी है कि हमारा देश का ज़्यादातर जो लैंड एरिया है वहाँ पर सूरज से आ रही सोलर एनर्जी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलती है साल के मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो साल पूरे साल लगभग हम लोगों को हमारे देश में सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से मिलती है। अगर साल में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी ज़्यादा एनर्जी हमारे देश में आती है उसकी बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आर एनर्जी हमारे धरती पर, हमारी भारत की धरती पर हर साल पड़ती है सोलर एनर्जी, जिसका यूज किया जाए तो सोचिए ये बहुत ही ज्यादा होगा। अगर नॉर्मल दिनों की बात की जाए, जब क्लाउड्स ना हो हमारे आसमान में, तो ऐसे में सूरज से जो रोशनी आती है, जो एनर्जी आती है, वो अगर डेली के बारे में बात की जाए तो डेली कम से कम 4 to 7,000 किलोवाट आर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो रोज रोज इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे देश में पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सोलर कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन दी गई है। द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर एक्सपोज्ड परपेंडिकुलरली टू द रेज ऑफ सन एट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नोन एज सोलर कॉन्स्टेंट। इसके बारे में आप लोगों को याद करके रखने की जरूरत नहीं है। सोलर कॉन्स्टेंट आप लोगों को 12th में वापस से पढ़ाएंगे, 11th में पढ़ाएंगे। वैसे आप समझना चाहते हैं तो सन से जो रोशनी आ रही है हमारी धरती के ऊपर, सन और धरती के बीच की दूरी को देख करके कितने एरिया में वो पड़ती है, इसी को कहते हैं सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर कॉन्स्टेंट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक फॉर्मूला होता है जिससे ये वैल्यू निकाली जाती है। ये आप लोग 11th में पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो वैल्यू निकाली जाती है अप्रोक्सीमेटली इट इज 1.4 किलो जूल पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतनी एनर्जी जो है ये पड़ती है धरती के ऊपर। अब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है ये होता है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को इंटेंसिटी बताई गई है, 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको हम कन्वर्ट करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी 14.5 करने को कहा है, पेज नंबर 249 पर। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए होंगे 2 कॉनिकल फ्लास्क, पेंट चाहिए होगा आपको व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का। और इन पेंट्स को यूज करके जो 2 कॉनिकल फ्लास्क आपने लिए हैं, एक कॉनिकल फ्लास्क को ब्लैक पेंट कर देना है कम्प्लीटली और एक कॉनिकल फ्लास्क को व्हाइट पेंट कर देना है। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क अगर नीचे से ओपन है तो उसे क्लोज करके किसी तरीके से उसे उसके उसके प्लग को क्लोज करके उसमें कुछ भी ठूस दो मटेरियल और उसको क्लोज कर देना है, उसका फनल बेसिकली, और उसमें पानी भर देना है और उसको आपको सनलाइट में रख देना है, तेज धूप के नीचे रख देना है। कुछ घंटों के लिए छोड़ दो, जब तक धूप है तब तक के लिए छोड़ दो। उसके बाद शाम को पानी का टेम्परेचर नापो, आप ये चेक करो कि व्हाइट वाला जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें पानी जो रखा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है कि ब्लैक वाले जिसको पेंट किया था उस कॉनिकल फ्लास्क के पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। आप ये आप थर्मामीटर भी यूज कर सकते हैं, आप ये देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कॉनिकल फ्लास्क से आपने ब्लैक पेंट किया हुआ था उसकी पानी की टेम्परेचर ज्यादा होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि अगर ब्राइट कलर की चीजें होती हैं सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, लेकिन डार्क कलर की चीजें सन रेज को अब्सॉर्ब करती हैं, सन से आ रही एनर्जी को अब्सॉर्ब करती हैं। और क्योंकि आपने कॉनिकल फ्लास्क जिसको ब्लैक पेंट किया हुआ था वो क्या करता है, सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसे वो अब्सॉर्ब करता है, पानी का टेम्परेचर इसीलिए राइज हो जाता है और इसीलिए आपको पानी का टेम्परेचर ब्लैक वाले कॉनिकल फ्लास्क में ज्यादा मिलता है। अब अगर आप इस एक्टिविटी से जो आपको नॉलेज मिली है इसका यूज भी आप कर सकते हैं, सोलर कुकर्स बनाए जाते हैं। सोलर कुकर्स बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जिसका यूज करके हम सूरज की रोशनी से खाना पका सकते हैं या फिर ऐसी चीजें जो गर्म करके पकाते हैं, जैसे चावल गर्म करके पकाते हैं, तो हम यहाँ पर चावल पका सकते हैं, सूरज की रोशनी को यूज करके चावल पका सकते हैं। सोलर कुकर्स की आपको पिक्चर दी गई है, पेज नंबर 249 फिगर 14.6। इसमें आप देखो एक कंटेनर रखा गया है और उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, ग्लास की शीट लगाई हुई है। उससे क्या होता है कि सूरज से जितनी भी रोशनी सारी पड़ रही है वो मिरर से टकरा करके फिर जो खाना आपने रखा हुआ है जिसे आप पकाना चाहते हैं उस पर पड़ती है। अब जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या करते हैं कि एक बेसिकली ब्लैंकेट बन जाता है जिसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी जो सन की एनर्जी है, सूरज से जो भी रोशनी आती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में धरती के अंदर तो आ जाती है लेकिन धरती से एस्केप नहीं कर पाती है। आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ग्लास के रूम्स बनाए जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, जहां सूरज की रोशनी कम आती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो पौधे वगैरह उगाए जाते हैं उनको उस ग्लास के रूम में रखा जाता है और फिर क्या करते हैं, जितनी भी सूरज की रोशनी आ रही है वो उस ग्लास को क्रॉस करके पौधों पर पड़ती है और धरती को गर्म कर देती है, जो सॉइल है उसको गर्म कर देती है। अब वो जो गर्मी सूरज से आई है वो ग्लास के अंदर तो आ गई लेकिन ग्लास के बाहर नहीं जा पाती है, तो वो ट्रैप हो जाती है। तो उस एनर्जी को यूज करके पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पर यूज किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने बनाया हुआ है ग्लास कुकर, जो सोलर कुकर हमने बनाया हुआ है, इसका ढक्कन हम ग्लास का रख देते हैं ताकि सूरज से जो रोशनी आए वो ग्लास को क्रॉस करके कुकर के अंदर तो आ जाए, सोलर कुकर के अंदर तो आ जाए लेकिन एस्केप ना कर पाए, तो हीट जो है वो ट्रैप हो जाएगी। अगर हीट ट्रैप हो जाएगी तो वो हीट हमारे खाने को पकाने में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से हम सोलर एनर्जी का यूज करके खाना भी पका सकते हैं, और जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसका नाम होता है सोलर कुकर। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं इस चैप्टर के। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।